الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بيش تندي نوسي إصلاح کی نسخہ جو کہ تمام مشائخ کے نزدیک معتبر ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. یا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پچھلے چند ہفتوں سے اس نسخے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ نسخہ کیا ہے کہ چار چیزوں میں کمی کر دی جائے: قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، اور قلت اختلاط مع الانام. یعنی کھانے پینے میں کمی، گفتگو میں کمی، نیند میں کمی، اور لوگوں سے میل جول میں کمی. اور مشائخ کی تحقیق کے مطابق قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو چاروں چیزوں میں کمی کرنا ہے، یہ صرف سالکین طریقت کے لیے اصلاح کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے. مشائخ کے یہاں ان چاروں چیزوں کا اہتمام کروایا جاتا ہے، اور ان چاروں چیزوں پہ ہم نے گفتگو کی پچھلے چند دنوں سے اس صبح کی مجلس میں. قلت اختلاط مع الانام پہ گفتگو ہو رہی ہے، یعنی لوگوں سے میل جول میں کمی کرنا. اور اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ لوگوں سے میل جول میں کمی کرنا کوئی مستقل چیز نہیں، کہ کچھ عرصے کے لیے سالک کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے ہٹ کٹ کے اللہ کو یاد کیا جائے، اور ہر گول کو اچیو کرنے کے لیے انسان ایسا کرتا ہی ہے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کو یہی کہا جاتا ہے کہ بس اب تو پڑھائی کر. گھر کو بھی چھڑوایا جاتا ہے کہ جی تو گھر سے چھوڑ کے یونیورسٹی میں رہنا شروع کر دے، اور تیرا فوکس صرف پڑھائی پہ ہونا چاہیے، تاکہ تیرا ایک گول ہے کہ تجھے ڈگری مل جائے. سالکین طریقت کو بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جتنی ہو سکے اپنے آپ کو غیر ضروری ملاقاتوں سے بچائے، تاکہ وہ بھی ایک گول حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس گول کو ہم نے کہا مشائخ کے نزدیک اس کا نام ہے فنائیت، فنا فی اللہ. اور اس حوالے سے ہم نے پچھلی مجالس میں یہ بھی عرض کیا کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فنائیت یہ ہے کہ انسان پر غالب ذکر آ جائے، یعنی اس کے زیادہ تر اوقات ذکر میں گزرے، اور گناہوں سے پرہیز نصیب ہو جائے. تو جو گناہ میں پھنس جاتا ہے اور گناہ کی طرف بار بار جاتا ہے، تو اس سچویشن سے نکل آ رہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ فنائیت والا شخص ہے، یہ فنا فی اللہ ہے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ قلت اختلاط مع الانام مشائخ کے نزدیک معتبر ہے، اس کو کروانے کے لیے کہ کچھ عرصے کے لیے ذکر اذکار اللہ کی یاد ہر چیز سے ہٹ کٹ کے کریں. اس حوالے سے ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ کیا یہ فنائیت واقعی اچیویبل گول ہے، کیا واقعی یہ فنائیت لوگ حاصل کرتے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے مثالیں بھی بیان کی. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمتہ اللہ علیہ والی بھی ایک مثال بیان کی، اور ماضی قریب میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مظلوب رحمتہ اللہ علیہ کی بھی ایک مثال بیان کی. تو اس حوالے سے مشائخ کا قول یہ ہے کہ یہ فنائیت کا حاصل کرنا یہ کوئی ایک ناممکن سی چیز نہیں ہے، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. جو بھی سالک کچھ وقت کے لیے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس کو یہ فنائیت نصیب ہو جائے گی. आज की इस मजलिस में इस किल्लते इख्तिलात माल अनाम के हवाले से एक और अहम बात, कहना तो यही चाहता एक आखिरी अहम बात, क्योंकि इतने दिनों से इस टॉपिक की गुफ्तगू हो रही है, मगर कल फिर कोई जहन में बात आ जाएगी तो मैं कहूंगा नहीं आखिरी बात नहीं थी। तो एक और अहम बात करना मकसद है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग और कई मर्तबा सालिक खुद ये समझ बैठता है कि जी मुझे किल्लते इख्तिलात माल अनाम करना है, और वो इसके मतलब को ये समझता है कि अब मैंने हर चीज से हट कट के बैठ जाना है, न काम कारोबार करना है, न बीवी बच्चों का ख्याल करना है, न वालदैन रिश्तेदारों की तरफ तवज्जो करनी है, और वो इस आड़ में ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ने के चक्कर में होता है। तो दीन इस्लाम में हलाल रोजी कमाना ये फराइज में से है, दीन इस्लाम में वालदेन की बीवी बच्चों का ख्याल करना फराइज में से है। तो इनसे यानी इस इख्तिलात माल अनाम का मतलब ये ना लिया जाए कि बस ठीक है जी मशायख के नजदीक इख्तिलात मोतबर है, अब मेरी जान छूट गई इन सारी जिम्मेदारियों से, बल्कि हलाल रिस्क के लिए कोशिश करना। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तमाम फराइज के बाद रिस्क के हलाल का तलब करना ये फर्ज है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स हलाल रोजी कमाने के लिए कोशिश करता है इस नियत से कि मुझे और मेरे बीवी बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, वो कयामत के दिन चमकते हुए चेहरे के साथ अल्लाह के सामने आए, तो ये नेकियों में से बड़ी नेकी है। तो इस इख्तिलात को बिल्कुल ये ना लिया जाए कि इसके जरिए से इंसान अपनी बेसिक जिम्मेदारियां, रिस्क कमाने की जिम्मेदारी, बीवी बच्चों को वक्त देने की जिम्मेदारी, वालदेन रिश्तेदारों को वक्त देने की जिम्मेदारी से जान बचा जाए कि नहीं जी मैं इख्तिलात में हूं इसमें, बिल्कुल भी नहीं। ये इख्तिलात एक आरजी सी चीज है, और इस इख्तिलात के दौरान भी ये जिम्मेदारियां अगर सर पे हैं तो वो सर पे हैं और उनको पूरा करना है। नबी अलैहि सल्लतु वसलाम की खिदमत में एक सहाबी तशरीफ लाए और वो हाजिर जब हुए तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कुछ मेरी मदद कर लें, मैं बड़ा मिस्कीन हूँ। नबी अलैहि सल्लतु वसलाम की मुबारक आदत तो यही थी कि मिस्कीन कोई भी आएगा तो आप उसकी मदद करते थे, मगर सहाबा कराम की तो तरबियत फरमाते थे, तो कोई फकीर वैसे दरवाजे पे आता तो मदद करना है और मदद करने की आपने तरगीब भी फरमाई, मगर आपको ये पसंद नहीं था कि आपके सहाबी या वैसे मुसलमान जो है वो किसी के सामने हाथ फैलाएं, तो आपने उनसे फरमाया कि तेरे पास क्या है, अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं है, नहीं फिर भी कुछ तो होगा, मैंने कुछ भी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए फिर भी कुछ तो होगा, तो कहे अल्लाह के नबी मेरी पूरी कुल कायनात जो मेरे पास वो एक प्याला है और एक तकिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तो वो तो यही समझ रहे थे कि जी ये जब बताऊंगा तो अल्लाह के नबी को यकीन हो जाएगा कि अब मेरी मदद ही करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि जाओ अपना ये तकिया और ये प्याला लेके आओ, वो साहब ही अपना तकिया और प्याला उठा के लेके मस्जिद में आए, मस्जिद के अंदर सहाबा कराम तशरीफ फरमाते, आपने मस्जिद में उसके तकिए और उसके प्याले की बोली लगाई जी कौन मुझे इस तकिए और इस प्याले के लिए एक दिरहम देगा। हदीस पाक में आता है कि चार सहाबा कराम ने हाथ उठाया कि जी ये हम खरीद सकते हैं एक दिरहम, बोली उस जमाने में यूं लगती थी, आपने फरमाया अच्छा कौन मुझे 2 दिरहम देगा। तो अब सिर्फ एक ही साहब, उन्होंने कहा जी मैं 2 दिरहम दे सकता हूँ, मुझे ये दोनों चीज चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बेचारे उसके तकिया और उसका प्याला जो है वो 2 दिरहम में बेच दिया और उससे कहा कि तू 1 दिरहम क्या अपने लिए खाना ले आ। 1 दिरहम में 10 12 15 दिन का उस जमाने में कुछ ना कुछ गुजारे के मुताबिक खाना आ सकता। और फरमाया 1 दिरहम से तू कुल्हाड़ी खरीद और जा लकड़ी काट और अपने हाथ से ही अपना माल कमा, ना रिस्क कम। तो बड़ा आसान था, आप उसको फरमा देते कि जी मस्जिद में बैठ जा, इख्तलात माल अनाम, कुरान पाक की आयत है, जिक्र तुम इस तरह से करो जैसे हट कट के, जैसे हटने कटने का हक है। तो बिठा देते कि ठीक है, वैसे तू किसी काबिल तो लग नहीं रहा है और तू ऐसे लग ही नहीं रहा है कुछ कमा सकेगा। आपने पसंद फरमाया कि नहीं अपने हाथ से कमाओ, तो इख्तलात माल अनाम का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंसान काम कारोबार नौकरी ना करे। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस, आपने फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाता है वो अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब बंदा है। तो हम समझते हैं कि अल्लाह का महबूब बनने की में रुकावट है, जो नौकरी कर रहा है, काम कारोबार कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है अपने, उसके लिए भी एक रास्ता निकल आया है अल्लाह का मुकर्रम बनने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन तमाम चीजों की सही समझ अता फरमाए। मशायख फरमाते हैं कि जी ये तमाम जो चीजें मशायख बताते हैं करने के लिए, ये मशायख से पूछ के ही करनी चाहिए, बजाय इसके कि अपने जहन में ही कोई ना कोई खाका बना लिया जाए कि जी इख्तलात माल अनाम तो मतलब यही लगता है। हमारे एक अमेरिका वाले दोस्त थे, उन्होंने कुरान पाक में पढ़ा कि जी तुम मशरिक की तरफ रुख करो या मगरिब की तरफ रुख करो, ये जरूरी नहीं है, ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा है कि नमाज पढ़ते वक्त तो मशरिक मगरिब की तरफ करो, ये मकसद नहीं था। तो ना उसका सियाक देखा ना उसका सबाक देखा, और उन्होंने जो पहले किबला रुख होकर नमाज पढ़ते, उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है, तो कभी इधर नमाज पढ़ने कभी उधर नमाज करने, तो कह भी रहे कि जी सारी दुनिया इस तरफ नमाज पढ़ी तो उस तरफ नमाज पढ़ना, कहा जी मैंने कुरान में पढ़ा होता है अल्लाह ने फरमा दिया तुम मशरिक की तरफ करो तुम मगरिब की तरफ रुख करो, कोई फर्क नहीं। तो इसलिए इंसान बड़ों से पूछ पूछ के, मशायख से पूछ पूछ के, खास तौर पे ये जो मामलात इस्लाह के हैं, तो जिससे इस्लाह के लिए ताल्लुक किया है उसी से पूछ पूछ के अगर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि अपनी सोच के घोड़ों को दौड़ाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्लाह नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह العالمين, दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वसलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.